October 20th morning, Gurudev.
Vendaranya nivasi sambhidila sattamati ramotaya Radha
त्यागों से परिवृत्त होकर के गिर करके
भगवान कृष्ण बलदेव जी के साथ प्रत्युकनों को संहार कर कुरु पांडवों के मध्य में प्रबल कला करा है। पहले ब्रज में रहते समय अघातु बघातु पूतना इत्यादि ब्रह्मासुर इत्यादि सब असुरों का संहार किया, उसे पार भरण हुआ। मथुरा में आए, कंस इत्यादि को, उसके परिकरों को, चारु मूर्ति इत्यादि को मार करके कंस को भी क्षण मात्र में बड़ी आसानी से उनका बल कर रहा। जरासंध 17 बार इतने अक्षौहिणी सेनाओं के साथ में आया, बलदेव जी उसको मारी जान से मार रहे थे, किंतु कृष्ण ने रोक दिया। अभी गुफार हरण नहीं हुआ है, अभी 17 बार आएगा और 17 बार में सब अक्षौहिणी सेनाओं को लेकर के आएगा, उनको मार करके कुछ भार गुफार हरण हो। इसके बाद में काल यमन को, दंत वक्र को आदि सब, अंत में शिशुपाल का वध किया, पंडित वासुदेव का भी जो चतुर्भुज लगा रखा था अपने को वासुदेव रखा। इसके बाद में कुरु पांडवों में कलह लगा दिया, बिना उसकी प्रेरणा का द्रौपदी का अपमान नहीं होता। युद्ध जितने हुए हैं महायुद्ध सब स्त्रियों के लिए ही प्रयोग हुए हैं। इतना बड़ा भारी महाभारत द्रौपदी को कलंकित करने की चेष्टा कर रही और भीम ने अर्जुन ने प्रतिज्ञा की जब तुम्हारे इस प्रकार से क्रोध जला कर और दुर्योधन ने उत्तेजना जला कर और दोनों सेनाओं को मत कर केवल पांडवों की तरफ में 5-6 आदमी कृष्ण समेत पांचों पांडव और उधर भी द्रोणाचार्य के पुत्र वो कृपाचार्य कृष्ण वर्मा और बाकी पंचगढ़ इस सब के बाद में ब्रह्मा जी देवताओं के शंकर इत्यादि साथ में आए। प्रभो सब काम हो गया है, इसलिए आपको हम लोगों ने प्रार्थना की, पृथ्वी अब प्रसन्न है, उनका भूधारण हो गया है। अब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्वधाम ब्रज वृंदावन में उपस्थित हो जाए। कृष्ण का आज अभी नहीं कुछ बाकी है, हमारे बाहुबल से रक्षित या तो लोग विश्व के लिए या देवताओं के लिए भी अजेय हैं। देवता लोग भी किसी प्रकार से इनको जीत नहीं सकते हैं। प्रद्युम्न अनुरुद्ध भगवान के अंत इसी तरह से सात्यकी इत्यादि है, कृष्ण के जितने पुत्र थे वो वैसे ही भगवान है, ये रहेंगे तो उत्पात मच जाएंगे। ब्रह्मा जी से कहा, किंतु इनके बातों में भी कुछ रहस्य है, वो पीछे मालूम होगा। उन्होंने ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी को कहा, अच्छा तो मैं जा रहा हूं, आदेश कीजिए, हम लोग आपके वहां गमन की प्रतीक्षा करें। कृष्ण ने अब क्या किया, ऐसे उत्तांत देवताओं के लिए भी अपराध है, जो लोगों को अपने लोक में ले जाने के लिए लीला की रचना है। उद्देश्य क्या था, हम अपने इन लोगों के साथ में अपने परलोक में जाएंगे, भगवान के अंश प्रद्युम्न, क्या इनका संहार हो सकता है, अनुत का संहार हो सकता है, बलदेव जी को कोई मार सकता है, नहीं। अद्भुत वो भगवान के अंश थे और भी ऐसे ही जनवंशित थे जो कृष्ण के परिकर थे, उनका ध्वंस कैसे होगा, इनले ध्वंस नहीं। इस लीला के माध्यम से अपने समस्त परिकरों को लेकर के जो वैकुंठ के पार्षद थे उनको वैकुंठ के पार्षद में ले गए, जो स्वर्ग के देवता के अंश थे उनको स्वर्ग में पहुंचा दिया, और जो लोग गोलोक वृंदावन के परिकर थे उन लोगों को गोलोक वृंदावन में सबको लेकर के गोपियां इत्यादि नहीं थी, सीताम सुभा वहां पर कृष्ण के अंश से जो भी हो उसको लेकर रोहिणी थी। इस प्रकार से कृष्ण ने यह बड़ी रहस्यपूर्ण लीला की, उन्होंने क्या किया सोचा, यह सोच करके ऋषियों में प्रेरणा दी, तुम लोग यज्ञ करो, और इधर में उन्होंने प्रेरणा दी सांप को स्त्री बनाकर के ले जाओ, पेट पर पूजा बना दो, पूछो कि इसके गर्भ में लड़का होगा बेटा भी नहीं, ये बड़ी लजीली है, शाम भी वैसे इतने सुंदर थे कि स्त्री के रूप में सजा देने से उनको कोई भी पहचान नहीं। ये लोग जहां वो यज्ञ कर रहे थे वहां पर पहुंचे, शाम इत्यादि जदवंश के जिसने राजकुमार थे, और वहां पहुंचकर शाम को स्त्री बना करके जिसमें दुर्वासा जैसे महाविक्रमी सब ऋषि नाग इत्यादि सब वशिष्ठ थे, देवल अतिथि सब बड़े बड़े दिमाग थे, उसी समय में उठा इसको बेटा हो कोई या बेटी, एक बार नहीं दो बार दस बार कहा वो चुप रहे, जब बार बार पूछने लगे तो उन्होंने कहा इसके गर्भ से न बेटा होगा न बेटी होगी, इसके गर्भ से क्या होगा मूसल, और उससे जदुवंश का ध्वंस हो जाएगा। सुन करके डर गए वो लोग, और कोई दूर जा करके पेट उसका खोला तो देखा जैसे तवापान रखा था उसके नीचे से एक मूसल निकला, इसके अंतिम भाग में लोहे का लगाया हुआ था गोल और बाकी कार्ड था, देख करके उग्रसेन बिहार गए। कृष्ण के पास नहीं गए, उग्रसेन के भी डर गए और उसको मुसल को चूर्ण कर दिया, जला करके खाक कर दिया लकड़ी वाला, और नीचे का जो लोहे का था उसको रगड़ते रगड़ते कसरत के चूर्ण कर दिया, और जो बाकी रह गया उसको रगड़ नहीं देते हाथ पर लिए, बड़ा नुकीला हो गया और लेकर से समझ गए। फेंकते ही समुद्र को तो जानते हैं, जो वापिस नहीं लेता फिर लौटा देगा, जो चूर्ण था उसको तो समुद्र के किनारे में लगा दिया, उसे एकता का बंध हो गया, बड़ी धार उसमें, और तो लोहे वाला जो बाकी रह गया था उसको एक मछली ने निगल गया। मल्लाहों ने जो मारते हैं मछली वाले, उन लोगों ने मछली को पकड़ा, उसके पेट से वो निकला, उसने अपने नुकीले बाढ़ के ऊपर में लगा। इसके बाद में पीछे हम बतलाए जो सोचा
by the mercy of the great saint Narad Muni, Vyasadeva saw in his trance of Samadhi all the pastimes of Sri Krishna from his birth up until the completion of his pastimes in Dwarka. What he saw in his Samadhi, he wrote. Therefore, that Samadhi Bhasa took the form of the Srimad Bhagavatam. Especially Vyas, he gave the essence of all the scriptures in the form of the Brahma Sutra or the Vedanta Sutra, of which the natural commentary is the Srimad Bhagavatam itself. We know that even though he compiled everything, he was not satisfied until he completed the Srimad Bhagavatam. They were everyone, they know something about the pastimes of Krishna. But how to actually enter those pastimes, how to realize them, that's what the answer to that was spoken by Krishna himself in his instructions to Uddhava. That is the 11th canto of Bhagavatam, known as the Uddhava Samvad. Therefore, after the completion of his pastimes in Dwarka, Sri Krishna was thinking, as spoken by Sukadeva Goswami. Hey, Parikshit, surrounded by the Rishis and the Pandavas, with their assistance, Krishna killed many demons. In Vrindavan, he killed demons such as Agasur, Bakasur, Putana, Trinavata, etc. And he removed the burden of the earth in doing so. In Mathura, he easily killed fierce demons like Kamsa and his associates like Charan and Mustik. Also, Jarasandha attacked Mathura 17 times. Each time Jarasandha brought a huge army. Krishna and Balaram destroyed the whole army, but when Balaram went to kill Jarasandha, Sri Krishna stopped him, knowingly. Why? Oh, no, no, to kill him. He will go back and bring another army next year. Yeah. Thus, 17 times he came and his whole army was finished. Not only that, Sri Krishna killed big demons like Kalyavan, Dandabhakra, Sushupal, and Pondra Vasudev, who took four, who assumed the fake four-headed form. Not only that, Sri Krishna himself also deliberately inspired friction between the Kuru and the Pandu dynasty. Otherwise, without the direct inspiration of Krishna, how could the Kurus try to disrespect and disrobe Draupadi? Krishna was the cause of that. Therefore, Krishna himself was the cause of the Mahabharata war. He inspired Krishna and he inspired Arjuna and Bhima to take vows and must finish the Kuru. Thus, by the inspiration of Krishna, almost the entire army of the Kuru, except for a few guys like Asvatthama, Kumacharya, and Vrindavarman, and the whole entire army of the Pandavas, except for a few persons, were all destroyed. Thus, at the end of the pastimes of Dwarka, Lord Brahma and the Devatas, demigods, they came and prayed to Krishna. O Sri Krishna, you have mercifully performed the task for which we pray to you, to remove the burden of the earth. Therefore, please return to your abode with your eternal associates. Then Sri Krishna said, I cannot go now. There's a few things that I have to do. Krishna was thinking, my personal associates are still there, and they are very powerful. They cannot be killed, even by the demigods. Especially Prajumna, Aniruddha, and Balaram. They are incarnations of Bhagavan. And the sons of Sri Krishna himself, they are not less than him, as well as great personalities like Satyaki. Therefore, Krishna did not reveal this, he kept it secret, and it was revealed afterwards. Therefore, Krishna ordered Brahma, don't worry, I have a few things left to do, I will come soon. Therefore, Krishna arranged this pastime, which we will hear of, in order to take all his associates back to their abodes. Can anyone else kill personalities like Prajumna, Aniruddha, or Baladev, or even the associates of Krishna? Therefore, by this pastime, also Lila, Krishna arranged that all the eternal associates of Vaikuntha would go back to Vaikuntha. All the demigods who had taken birth in the dynasties of the Vrishnis to assist Krishna's pastimes would go back to the heavenly planets, and those eternal subjects like Rohini Devi would go back to Goloka Vrindavan. Therefore, Krishna arranged this pastime. Krishna ordered all the rishis perform yajna. Thus, great personalities like the very fiery Durvasa, Vashishtha Rishi, Nara, Asit, Devala, overperforming yajna and gathered in one place. At that time, Samba, who is very beautiful and a little bit of lipstick and candle, would become like a woman herself, very attractive. Therefore, they dressed him in a sari and keeping some cloth as if he was pregnant. They came before the rishis and asked, O sadhus, you know everything, past, present, future. Will this doe-eyed lady give birth to a boy or to a girl? Maybe 10 or 15 times they asked this question, but the sadhus remained silent. Then they became angry. You think we are fools? She will not give birth to a boy or to a girl. Rather, she will give birth to an iron club, which will be the cause of the destruction of your dynasty. Thus,